ओम शांति।
एक जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था, युवा था, श्रेष्ठ तपस्वी था, संयमी था, ब्रह्मचारी था। एकांत में बैठकर तपस्या मग्न रहता था, मौन में, संसार से बहुत दूर अकेला बैठकर तपस्या करते रहता। और धीरे धीरे उसकी तपस्या गहन होती जा रही थी। एक दिन एक ऋषि पुत्री ने उसे देखा और उस ऋषि कन्या को लगा कि सन्यासी की, इस तपस्वी की, इस योगी की सेवा करनी चाहिए। और उसने उसकी सेवा करनी चालू की, परंतु वो दिखने में कुरूप थी। वो सेवा करती गई और सन्यासी की तपस्या बहुत गहन होती गई। और जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, हमेशा कोई धरती पर तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, उसे कुछ कुछ होने लगता है। तो उसने एक युक्ति रची, उसने सोचा कि इस योगी के जीवन में माया की प्रवेशता होनी चाहिए। तो वो कन्या जब पानी भरने गई और पानी को हाथ लगाया और अपने मुंह पे छिड़का, तो अचानक उसका रूप बदल गया और वो रूपपति हो गई। उसे भी आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया। पर वो सन्यासी की सेवा करना उसने चालू रखा। पर अब उसको ये डर था कि सन्यासी मुझे कहीं देख ना ले अचानक आंखें खोलकर। इसके लिए वो चुप चुप कर उसकी सेवा करती, फल रखती, फूल रखती, पानी रखती, पर ध्यान रखती कि वो मुझे न देखे, क्योंकि उसकी तपस्या शायद हो सकता है मुझे देखने से भंग हो जाए। कई दिन कई मास वो सेवा करती रहती है, सन्यासी बेखबर सन्यास संसार से, अपनी साधना में मगन, जैसे कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य उसने रखा हो। और एक दिन जैसे ही वो कन्या, वो ऋषि पुत्री फल रखने जाती है, अचानक सन्यासी की आंख खुलती है और वो उसे देख लेता है, और देखते ही आंखें बंद कर लेता है। वो कन्या वहां से चली जाती है और उसे बहुत दुख होता है, उसे आत्मग्लानी होती है कि मैंने उसकी तपस्या भंग कर दी। पर अंदर से थोड़ी सी खुशी भी होती है कि उसने मुझे देखा तो सही, जिसकी मैं इतने दिनों से सेवा कर रही हूं, उसने मुझे देखा तो सही। खुशी भी होती है, दुख भी होता है, दोनों होता है, पर दुख ज्यादा होता है। रात भर सो नहीं पाती और सुबह उठकर संकल्प करती है कि मैं अब यहां नहीं रहूंगी और वो जंगल छोड़कर कहीं दूर दूसरे आश्रम में चली जाती है, फिर वापस कभी नहीं आती है। सन्यासी अकेला रह जाता है, अपनी तपस्या में मगन, तपस्या चालू। और अब तो वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने लगता है, भोजन पानी सब कुछ, पूरे शरीर पर जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं रेत या मिट्टी का वो पहाड़ बन जाता है, ऐसी गहन तपस्या करते रहता है। इंद्र प्रकट होते एक दिन, कहते हैं ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आखिर किस लक्ष्य से कर रहे हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, आंखें खोलो मैं प्रसन्न हूं, जो मांगोगे वो दूंगा, स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तैयार है ले लो। वो योगी कहता है मुझे स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है, और क्या है फिर इससे भी बड़ा संसार में? क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए? वो कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब मोक्ष और मुक्ति से बड़ा क्या है संसार में? फिर तुम्हें चाहिए क्या? इंद्र को आश्चर्य होता है। वो सन्यासी कहता है, वो ऋषि कन्या कहाँ है? क्या कहता है? वो ऋषि कन्या कहाँ है? कहानी यहां पूरी होती है। इच्छा बहुत सूक्ष्म है, वासनाएं इतनी सूक्ष्म है कि किस रास्ते से कब आ जाए वो भी पता नहीं चलता। सारी तपस्याएं और सारा ब्रह्मचर्य एक तरफ, और एक इच्छा रह गई अभी भी, स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, वो उस कन्या चाहिए जिसको केवल एक ही बार देखा था, और वो भी बाद में चली गई थी, फिर ना आई। वासना के मार्ग सूक्ष्म है, जन जन आत्मा काम विकार में डूबी रही है, जन जन आत्मा ने विकारों का सुख भोगा है, और एक दिन अचानक भगवान आ जाए और कहे तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्रता धारण कर ली, पवित्रता का व्रत ले लिया, आगे बढ़ते गए, परंतु साधना यदि नहीं और साधना के अभाव में फिर से वो पुरानी स्मृतियां जागृत होगी, इस जन्म की नहीं तो पूर्व जन्म की। साकार महावाक्य है बाबा के कि तुमने काम विकार से जितने पाप किए हैं और किसी विकार से नहीं किए, और ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म करने के लिए उतना समय नहीं लगता जितने अभी बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप, सूक्ष्म पाप और विकर्म हो रहे हैं। तो भगवान अब आया है संसार में, हमारा नव जन्म हुआ है, इस नव ब्राह्मण जीवन में हमारी धारणाएं, हमारी पवित्रता, हमारी योग की अवस्था, हमारी स्थिति, हमारा वैराग परम हो, सर्वोच्च हो, नहीं तो सारी तपस्या करने के बाद भी इच्छा रह जाएगी, वो ऋषि कन्या कहाँ है? अब है समय स्वयं को, अपने बिखरे हुए स्वयं को फिर से एकत्र करने का, स्कैटर्ड इंटेलेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करने का, भटकती बुद्धि को स्थिर करने का, वॉन्डरिंग माइंड को स्टेबिलाइज करने का। मन बहुत चंचल है, अगर अब नहीं किया ये कार्य तो पछताना पड़ेगा, फिर बहुत दुख होगा। फिर विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने मन की तुलना बंदर से की है, माइंड इज लाइक अ मंकी। मंकी अर्थात पहले से ही चंचल है, फिर ऐसे बंदर को किसी ने दारू पिला दी, फिर क्या हाल हुआ उसका, और विक्षिप्त तो पागल जैसा करने लगा। फिर इस शराब पिए हुए बंदर को बिच्छू ने काटा, फिर क्या हालत हुई उसकी, और फिर एक प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। ये मनुष्य का मन है, अब इसको कंट्रोल करो। इच्छाओं की शराब इस मन ने पी है, काम विकार का दंश स्कॉर्पियन बाइट हुआ है, बिच्छू ने काटा है, विकारों की प्रेतात्मा उसमें प्रवेश की है। हाउ टू कंट्रोल दिस रेस्टलेस माइंड, चंचलम ही मन कृष्णम। हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मैं क्या करूं, ये मन बहुत चंचल है, कैसे मैं इसको वश में करूं। इसको वश में करना तो जैसे हवा को वश में करना है। वैराग्य न तू कौन्तेय, अभ्यासे न तू कौन्तेय, वैराग्ये न चक्रुयते। हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग से इस मन को वश में किया जा सकता है। प्रैक्टिस एंड डिसइंटरेस्ट, निरंतर अभ्यास से मन वश में होगा। संगम युग का समय चल रहा है, समय की पुकार है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसी हम सात बातें देखेंगे जो केवल और केवल अब की जा सकती है, फिर कभी नहीं। संगम युग पर की जा सकती है, फिर किसी युग में नहीं, किसी कालखंड में नहीं। नाउ, नाउ इज द टाइम। डिवाइन कॉल आ जाए। एक विदेश के एक संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी के जीवन में उल्लेख है, नौजवान है, युवा है, शादी करने वाला है, देश पर किसी दूसरे देश ने हमला किया, इतना उमंग होता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। सेना में भर्ती हुआ, सैनिकों के साथ जा रहा है युद्ध खेलने, अचानक घोड़े को प्यास लगी, पीछे आया, घोड़े को पानी पिलाई रहा तो आकाश से आवाज आई, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस, गो एंड बिल्ड माय हाउस विच इज इन रुइंस, जाओ मेरा घर जो खंडहर बन गया है उसको फिर से बनाओ। वो सोचता है किसने आवाज दी मुझे, कौन ये कह रहा है, ये डिवाइन कॉल कहां से आ गया। पर वो जा नहीं पाता है, वापस लौट जाता है। उसके पिताजी उसको डांटते हैं कि तुमने हमारी नाक काट दी, देश के लिए लड़ने गए और वापस कायरो की तरह भाग के आए। राजा उसको जेल में डाल देता है, कारागार में रहता है, और वहां पर मौन और एकांत में परमात्मा प्रेम का हृदय में जन्म होता है। और जब छूट के वापस आता है तो ढूंढता है कौन सा वो खंडहर है, कौन सी वो जगह है जो आवाज मैंने सुनी थी, गो एंड बिल्ड माय हाउस अगेन विच इज इन रुइंस, जो जर्जर हो गया, जर्जरी भूत मेरा जो घर बन गया है, जाओ उसको ठीक करो। और वो एक जगह पहुंचता है और वो एक चर्च होता है जो खंडहर है, जहां कोई नहीं जाता, और उसका नवनिर्माण का कार्य वो चालू करता है। भीख मांगता है लोगों से, पत्थर इकट्ठा करता है, लोग पागल कहते हैं, और धीरे धीरे उस चर्च का निर्माण करता है। तब उसे समझ में आता है वो आवाज क्या थी, वो जो डिवाइन कॉल आया था, वो जो मौन पुकार थी, किसकी थी और क्या थी। और धीरे धीरे प्रभु प्रेमियों का एक नया संगठन तैयार करता है, जिसमें वो लोग दो प्रतिज्ञाएं करते हैं, चैस्टिटी एंड पावर्टी, ब्रह्मचर्य और गरीबी, फ्रांसिसियन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, एक नया सांप्रदाय की वहां से शुरुआत। क्रिश्चियन धर्म में ऐसा पहली बार कि जो ब्रह्मचर्य को धारण कर ले, वहां पर तो सब शादी करते हैं, 11वीं 12वीं शताब्दी, और एक नया ऑर्डर चालू हुआ। उसका बेसिस था प्यूरिटी, उसका बेसिस था धन से दूर, हाथ नहीं लगाएंगे। तो डिवाइन कॉल आ जाता है, क्या ऐसा कॉल हमें आया है। और जब तक नहीं आता तब तक हम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। अचानक आवाज आ जाए कि उठो जागो, क्या कर रहे हो, समय कौन सा है, अब ये नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे, नाउ और नेवर। उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ रुकना ही नहीं, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। सोई हुई आत्मा को स्वयं ही जगाना है, आत्मा मूर्छित पड़ी है भोग और विलास में, राग और अनुराग में, ऐसी मूर्छित आत्माओं में विराग उत्पन्न करना। तो इस संगम युग पर ऐसे सात कार्य जो केवल अब करने हैं। पहला, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख से भरना, टू फिल द सोल विद सुपर सेंशुअस ब्लिस एंड हैप्पीनेस। अगर ये कार्य अब नहीं किया तो कभी नहीं किया जा सकता है। अब ये समय नहीं है कि विषय और विषयों के भोग में हम डूबे रहे, अब वो समय है अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना। अतीन्द्रिय सुख की हिंदी शब्दकोश में परिभाषा है, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाए, उसे कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। और जो भी इंद्रिय सुख है, सेंस हैप्पीनेस है, सेंशुअल हैप्पीनेस है, वो सब आदि अंत वाले है, ट्रांजिटरी है, मोमेंटरी है, अभी है कल नहीं है। केवल और केवल अतीन्द्रिय सुख से आत्मा को भरना, शक्ति से इसको भरना, और फिर उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। और ये कार्य कब होगा सबसे ज्यादा? अमृत वेला। आप में से ऐसे कितने हैं जो कुमार और कुमारी आए हैं, विशेष पिछले एक मास में एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया? इंद्र सभा है, बहुत कम। फर्स्ट श्रीमत है ब्राह्मण जीवन की अमृत वेला। यदि अमृत वेला ही नहीं तो क्या कर रहे हैं फिर? वो सेवा किस काम की, जिस सेवा में की शुरुआत परमात्मा मिलन से नहीं हो रही। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, कितनी भी भागदौड़ करो सेवा की, जब तक निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी नहीं, केवल 5% जमा होगा बस। कोई सोचे मैं तो दिन भर भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, और ये तीनों चीजों के लिए पावरफुल अमृत वेला चाहिए, नहीं तो अहंकार आएगा। निर्मल वाणी कहां से आएगी? एरोगेंस होगा, घमंड होगा, आकर्षण होगा व्यक्तियों से, देहधारियों के प्रति। अतीन्द्रिय सुख से आत्मा को भरने के लिए क्या बनाना होगा? अमृत वेला पावरफुल। आज से ही संकल्प करो कि कल से कम अगले 3 दिन अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। जब 3 दिन हो जाए तो फिर 7 दिन का संकल्प करो, जब 7 दिन हो जाए तो 21 दिन का संकल्प करो, जब 21 दिन हो जाए तो 3 मास का। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। एकदम बड़ा संकल्प नहीं करो कल से 1 साल तक अमृत वेला करेंगे, ऐसा सब नहीं करो। छोटे 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 गोल्स, केवल 3 दिन, कुछ भी हो जाए। अगर सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी अमृत वेला मिस नहीं हो रहा है तो एक दूसरे की मदद लो, किसी को कहो कि मुझे मिस कॉल करे, फोन करे। तब तक कॉल करते रहे जब तक मैं उठा न लूं। मदद लो एक दूसरों की, सहयोग लो अमृत वेले के लिए कुछ दिन, नहीं तो यह भी एक बंधन बन जाएगा। बंधन कुछ नहीं बनने देना, परंतु अगर सब कुछ कर लिया है उसके बाद भी मिस हो रहा है तो एक दूसरे की मदद लेनी है, अलार्म लगा के रखना है 1, 2, 3, एक से नहीं होता है तो। परंतु शांति से बैठने जाना है, अमृत वेला हो नहीं रहा है और हम चल रहे हैं, कुछ करना है, बेचैन होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है। हर संभव मेथड ट्राई करो। अमृत वेला की किताब है छोटी सी, कितनों ने पढ़ी है? जिन्होंने नहीं पढ़ी कल ही वो किताब लेंगे, अगर सेंटर पर है या तो मधुबन कोई जा रहा है तो वहां से मंगा ले। अमृत वेले की छोटी सी किताब है। अगला वन मंथ, एक मास, सुबह और शाम दो बार वो किताब पढ़नी है। पहले तो ये समझ में आ जाए अमृत वेला है क्या, उसके महत्व क्या, उसके फायदे क्या, उसमें विघ्न क्या, उसमें क्या करना है, कौन सी ड्रिल करनी है, क्या क्या बाबा ने अमृत वेले के विषय में कहा है। संसार के लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद, कुछ दिन पहले मुरली थी, कितनी होनी चाहिए, डबल या आधी? आधी कहा था ना, मुरली आई थी कुछ समय पहले, पर ऐसा करना मत सीधा, नहीं तो दिन भर सोते रहेंगे। धीरे धीरे 5-5 मिनट की साधना है, कोई 3:30 बजे उठता है तो 5 मिनट जाने के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, इतना आसानी से नहीं होता है। तो संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख फर्स्ट अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। जन्म जन्म तो इंद्रिय सुख है, देवताएं भी इंद्रिय सुख भोगते हैं, द्वापर से भी इंद्रिय सुख है, केवल नाउ अभी समय है जब अति इंद्रिय सुख मिलेगा। अभी का समय भी अगर इंद्रिय सुखों में डुबो दिया तो इंद्रिय और चंचल होगी। फर्स्ट, सेकंड, नाउ इज द टाइम। भगवान का जो ज्ञान है विशाल, उसको अपनी आत्मा में धारण कर लेना, टू इम्बाइब नॉलेज। ज्ञान धारणा का अभी समय है। जन्म जन्म सतयुग त्रेता में शास्त्र नहीं है, कौन सी किताबें होगी पता नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो होगा ही नहीं क्योंकि हिस्ट्री है ही नहीं, कुछ आर्ट्स की किताबें होगी, पंछी कैसा नाचता है और मोर कैसा नाचता है। द्वापर कलयुग से शास्त्र पढ़ना चालू किए, अब समय है भगवान जो सुना रहा है उसको सुनना और सीधा धारण करना। सुबह थे ना आप ज्ञान की टिकलू टिकलू, जो थे चिड़िया हप कर जाए सागर को, बेचैनी हो कि हमने लेट एडमिशन ली है, स्कूल जनवरी में चालू हो गया मई में पहुंचे, एग्जाम दिसंबर में सबकी है, कोई ये नहीं कह सकता हमने एडमिशन लेट ली, क्यों ली, तुम्हारी गलती है। अच्छा लेट ली भी, अब वो पढ़ो जो तुम आने से पहले हुआ है, जनवरी से लेकर अब तक की जो पढ़ाई थी वो तुमको पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा स्टडी, सेल्फ स्टडी, बेचैनी होनी चाहिए। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष, शांति से नहीं बैठना, हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यदि अमृत वेला नहीं हुआ आज सुबह, मतलब अब तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर अमृत वेला नहीं हो रहा है, एक हफ्ते में एक बार भी मिस हुआ, अर्थात कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और उठे भी परंतु साधारण हुआ, उठे भी और नींद में जा रहा है, और उठे भी और बुद्धि भटक रही है और व्यर्थ संकल्प हो रहा है, उठे भी परंतु आत्मा परमात्मा प्रेम से नहीं भरी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हुआ, अशरीरी हो जाए, अर्थात कुछ नहीं पाया, तो दूसरा काम जो केवल अब करना है वो है ज्ञान को स्वयं में धारण करना। उसके लिए अब क्या करना, दूसरा काम आपको दे रहे हैं, स्पार्क की छोटी छोटी किताबें हैं, सबने देखी है, ढेर सारी किताबें हैं, जिसने नहीं देखी जब मधुबन जाएंगे तो वहां स्पार्क ऑफिस में किताबें हैं, छोटी 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 बहुत सारी किताबें, वो किताबों को कोई भी एक ले लेना और उसको पढ़ना चालू करना। उस किताब में अपनी एक सीरीज बनाना कि मॉर्निंग के समय हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, रात को उसी को रिपीट करेंगे, एक महीना तक एक एक सीरीज चलानी है। टीचर, संगम युग, सत्य, अलग अलग नाम है, छोटी छोटी किताब है जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है। एक है पूरी अव्यक्त वाणी पढ़ना, पर वो 8 पेजेस की होती है, इतना नहीं होता है, छोटा छोटा पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक किताब ले लेना, अपनी तकिया के नीचे उसको रख देना, छोटी सी किताब, सोने से पहले पढ़ना, उठते से ही एक पैराग्राफ पढ़ना, फिर अमृत वेला चालू करो। वो अमृत वेला फिर नींद भी नहीं आएगी, कुछ तो नया मैटर मिलेगा, उस टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर देना और फिर उसके ऊपर योग करना नया, तो ज्ञान को धारण करना, ये दूसरी बात है। तीसरा है पवित्रता, ब्रह्मचर्य। ये केवल और केवल अब हो सकता है, फिर कभी नहीं होगा। ब्रह्मचारी तो सन्यासी भी रहे हैं, पर उनका ब्रह्मचर्य दमन वाला ब्रह्मचर्य था, परंतु उनका ब्रह्मचर्य अल्पकालीन था, परंतु उनका ब्रह्मचर्य भगवान के द्वारा सिखाया हुआ ब्रह्मचर्य नहीं था, मनुष्य मत वाला था। और प्यूरिटी में क्या अनुभव है, अभी आपने जो ड्रिल की यहां पर, छोटी सी ड्रिल थी, पर प्यूरिटी का की पावर बहुत ज्यादा है, उसका सभी ने अनुभव किया होगा ब्राह्मण जीवन में। तो उस प्यूरिटी को स्वयं में धारण करना है, उसका अनुभव करना है, और वो काम केवल अब होगा। इसके लिए तीसरा काम दे रहे हैं आपको, जगदीश भाई की लिखी हुई एक किताब है ब्रह्मचर्य सेलिबसी। कितनों ने पढ़ी है? बहुत कम, इधर तो कोई भी नहीं हाथ उठा रहा है। सबके पास ये बुक, ये किताब होनी चाहिए, और एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सिप सिप, जैसे कोई जूस पीता है, धीरे धीरे, एकदम से पीनी नहीं, थोड़ा थोड़ा पीना है, एंजॉय करते करते पीना है, अनुभव करते करते पीना है, ज्ञान है वो। ये तीसरा काम, ये तीसरी सबसे बड़ी धारणा ब्राह्मण जीवन की, आज तक इस यज्ञ से जो भी आत्मा बाहर गई है, ऊपर से कारण दूसरे थे, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अंदर से एक ही कारण था, काम विकार। जरूर कोई आकर्षण हुआ, जरूर किसी ने खींचा। इसके लिए प्यूरिटी को धारण करने का केवल और केवल यही समय है, और उस प्यूरिटी को समझना है पहले, ऐसे ही नहीं धारण कर लेना है। काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, इतना कहने से काम नहीं होगा। क्यों? क्या पावर है, क्या शक्ति है? एकमात्र ऐसी शक्ति है, असंभव भी संभव हो सकता है। यहां तक कि वो संसार के लोग जो धार्मिक नहीं थे, परंतु अनमैरिड थे और ब्रह्मचर्य को धारण किया था अननोइंगली, उन्होंने भी अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य कर दिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी फोकस थी। काम एनर्जी को डिवाइड कर देता है, आकर्षण एनर्जी को डिवाइड कर देता है, फ्रेंडशिप एनर्जी को डिवाइड कर देता है, फैमिलियरिटी फोकस समाप्त कर देता है। फिर वही व्यक्ति याद आता है, उसी की बातें अच्छी लगती है, उसी पे फोन पे बात करना है, उसी को मैसेज करना है, उसी की यादें, उसी की कल्पना, उसी की स्मृतियां, सब कुछ वो व्यक्ति, बुद्धि वही घूमती रहती है गोल गोल। जो इस चक्र से बाहर है वही प्योरिटी का अनुभव कर सकता है और सारी साधनाएं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान प्योर बुद्धि में बैठता है। इम्प्योर बुद्धि इस इतने बड़े विशाल ज्ञान को धारण भी नहीं कर सकती। इंटेलेक्ट जितना प्योर होगा, बर्तन जितना पवित्र होगा, उतना ज्ञान उसमें ठहरेगा, नहीं तो बह जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। कई लोग कहते हैं मुरली पढ़ते पर याद कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा? छोटा सा बच्चा, उसको स्कूल की पढ़ाई में बिल्कुल याद नहीं रहता है मैथ्स, पर क्रिकेट मैच देखता है हर चीज उसको पता है, पिछले साल किसने कितने रन बनाए थे वो अब तक याद है। क्यों? इंटरेस्ट, प्यूरिटी में इंटरेस्ट को बढ़ाना है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ इम्प्योर बनाने वाला है। कोई भी टीवी चैनल कुछ भी खोलो, केवल अपवित्रता भरी है उसमें। ऐसे इम्प्योर वातावरण में प्यूरिटी को धारण करना, ज्ञान को धारण करना मासी का घर नहीं है, पर हो सकता है हम और हमें करना है, क्योंकि नाउ और नेवर। तो पहला बताया सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस, नाउ और नेवर, अतिंद्रिय सुख नाउ और नेवर, ज्ञान नाउ और नेवर, तीसरा प्यूरिटी नाउ और नेवर, चौथा तपस्या। केवल अब तपस्या की जा सकती है, आत्माभिमानी बनने की, ड्रिल करने की, आत्मा को विकारों से मुक्त करने की। एक तरफ है तपस्या, तापसी जीवन, और दूसरी तरफ है भोगी जीवन। ये देखना है मैं कौन हूं, तपस्वी हूं या भोगी हूं, किस कैटेगरी में जाऊंगा। अगर दो लाइनें खड़ी कर दी जाए, ये तपस्वियों की, ये भोगी आत्माओं की, मैं किधर जाऊंगा। दादी जान की जब विदेश से आई थी 4 साल के बाद, बड़े भाइयों ने, वरिष्ठ भाइयों अनुभव सुनाते हैं, वही साड़ी पहन के थी जो साड़ी पहन कर गई थी। उससे पता चल रहा था कि वो 4 साल लंदन में कैसे बिताए होंगे। तापसी जीवन था। दादी कितनी बार सुनाती है, मुंबई में जब थे आधा बस से जाती थी, फिर उधर के उतर कर पैदल, पैसे बचाने के लिए। ऐसा तापसी जीवन बनाना है, तपता हुआ जीवन, और वो करने का समय केवल अब है, फिर कभी नहीं। अगला है दुआएं, ब्लेसिंग्स, स्वयं की, आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार की, बाहर की आत्माओं की, और बाबा की। बाबा की दुआएं मिलेगी श्रीमत पर चलने से, आत्माओं की दुआएं मिलेगी उनकी सेवा करने से, ब्राह्मणों की दुआएं मिलेगी उनको तृप्त और संतुष्ट करने से, स्वयं की दुआएं मिलेगी जब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। आलस और अलबेलेपन में जीवन डूबा हुआ है, पुरुषार्थ के प्रति आत्मा सजग नहीं है, खुद की दुआएं नहीं मिलेगी। और ऊपर से चाहे कुछ भी दिख रहा हो, जो व्यक्ति तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और ऊपर से दिखा रहा है कि हम बहुत अच्छा चल रहा है, झूठ है, क्योंकि आत्मा बिना पुरुषार्थ के तृप्ति को पा ही नहीं सकती। ऊपर से कितना ही दिखाए, सेवाएं चल रही है, सेवाओं में सफलता हो रही है, जो भी हो रहा है, परंतु अंदर से तपस्या नहीं हो रही है, वो आत्मा अतृप्त है। क्योंकि आत्मा की तृप्ति तप में है, आत्मा की तृप्ति आत्माभिमानी स्थिति में है, आत्मा की तृप्ति परमात्मा प्रेम में है, संसार की भाग दौड़ में नहीं। फिर हम में और संसार की आत्माओं में क्या अंतर, वो भी भाग रहे कोई दूसरे कारण से, हम भी भाग रहे। सेवा तो कर रहे हैं, पर तो जिसकी सेवा चालू है उसी को भूले हुए हैं। एक संदेश है, सबने सुना होगा, मुंबई का, शायद प्रिंट हुआ या ना हुआ हो, बहुत पुराना, गुलजार दादी के द्वारा आया हुआ। मुंबई में मेला लगा, बहुत सेवाएं की, सबने दिन रात मिलकर, पहला मेला था, बाबा का संदेश आया। संदेश में बाबा ने बताया बच्चों ने बहुत सेवा की, बाबा मुबारक देते हैं, बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है, बाप दादा खुश है, ऐसा एक पेज भर संदेश था। और लास्ट में एक लाइन थी, बच्चे ये भी है, बच्चे वो भी है, बाबा ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं, लास्ट में लाइन थी, परंतु बच्चे बाप को भूले हुए हैं, फुल स्टॉप। सेवाएं बहुत की, परंतु बच्चे बाप को भूले हुए हैं। जिसकी सेवा कर रहे हैं वही बुद्धि से बाहर, संदेश दे रहे, कोर्स करा रहे, पर जिसका कोर्स करा रहे, जिसके लिए कोर्स करा रहे वही बुद्धि से बाहर है। वो भी एक मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक काम हो गया है, फटाफट इसको कोर्स कराओ, मुरली ये वो और चलो काम पूरा हुआ। काम पूरा करना, कारोबार, दुआएं प्राप्त करनी है तीनों की, परमात्मा की, जीव जगत ईश्वर। जीवों की, जीवात्माओं की, संसार की आत्माओं की, स्वयं की और उस निराकार की। और ये कार्य केवल अब होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। ये चौथा, पांचवा, परमात्म प्रेम, ईश्वरीय प्रेम से खुद को भरना। मनुष्यों से प्यार किया, देहधारियों से बहुत प्यार किया, अब समय है प्रभु प्रेम से स्वयं को भरने का। इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि संसार निरर्थक हो जाए, व्यर्थ हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही वैराग आ जाए। वैराग कब आता है व्यक्ति को? जब व्यर्थता को जानता है। और वैराग लाना है तो क्या करना पड़ेगा? पांच चीजें बताओ। अगर किसी से दूर होना है तो क्या करते हैं? ए है और बी है, आ और बा, दो लोग हैं। अब ए को बी से दूर होना है तो क्या करना पड़ेगा? ए को, एक व्यक्ति है ए, दूसरा है बी, ए को बी से दूर जाना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? संबंध का क्या है? तोड़ना है। अच्छा, और मोह कैसे निकाले? वही तो पूछ रहे, मोह कैसे निकाले? ए बी के बिना रह नहीं सकता। आई लव यू एंड यू लव मी, दोनों ही फंसे हैं। दोष दृष्टि, जिससे दूर जाना होता है उसके प्रति दोष दृष्टि, नेगेटिविटी, उससे नुकसान क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाओ। ये जो हमारा संबंध है दो व्यक्तियों का, या व्यक्ति और वस्तु का, उससे क्या क्या नुकसान हुए उसकी लिस्ट बनानी, उसके अवगुण देखना, घृणा आ जाए, नफरत हो जाए, ये सोचकर कि इस लगाव के वजह से मेरा पुरुषार्थ रहा जा रहा है, इस लगाव के वजह से कितनी सारी चीजें मैं कर सकता था, अगर ये ना होता तो आज मैं कहां से कहां होता, फंसा हूं, पंख ही काट दिए इस संबंध ने। नुकसान का चिंतन, व्यर्थता का चिंतन समझना ये बेवकूफी है, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी। ये करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं? अपनी मूर्खता का चिंतन करना। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूर्ख मन क्या कर रहा है? भगवान का चिंतन कर। तुलसीदास कहते हैं, मैंने रामायण किसको सुनाई? दुनिया वालों को नहीं, अपने मन को। हे मूर्ख मन, राम में मन लगा, काम से तुझे क्या मिला? प्रभु प्रेम से आत्मा को भरना है, और नाउ और नेवर। अगला है शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स। अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, सारे शक्तियां उसमें भरी हो, हर वो चीज की लिस्ट बनानी है जिससे आत्मा की पावर कम हुई है। एक लिस्ट बनानी है सबको टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स की, कौन सी चीजें हैं जिसमें मेरी एनर्जी को खींच रहा है कौन सी वो चीजें हैं जो टाइम लेस करती है। संगम युग पर इस पुरुषार्थ के समय पर बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है। हर एक अपनी एक सूक्ष्म लिस्ट बनाए कि ये वो चीज है, और जैसे ही आइडेंटिफाई करो उसको हटा दो। तो ये काम करना है कितने में, छह। छठवां, शक्तियों से अपने आप को भरना, स्पिरिचुअल पावर से। महाभारत में तीन प्रकार के बल बताए, बाहुबलम शारीरिक बल, बुद्धि बलम बुद्धि का बल, इंटेलेक्चुअल पावर्स, डिस्कवरीज कर सकते, इन्वेंशंस कर सकते, साइंटिस्ट जो कर सकते, पर इन दोनों बलों से ऊपर एक बल है आत्मबलम। भीष्म उस शैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर को ज्ञान सुनाता है, आत्मबल से स्वयं को भरना है। कितना हमने भरा है, या परिस्थितियों के समय, विपरीत परिस्थितियों के समय आत्मा हिल जाती है, कंपित हो जाती है। थोड़ा सा प्रलोभन आया, थोड़ा सा आकर्षण हुआ कि खींचकर नीचे दलदल में घुसती है, धस जाती है। तो पावर से भरना है। और लास्ट काम जो केवल और केवल अब किया जा सकता है वो है अपने आप को तैयार करना, एवर रेडी रहने का। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हम हैं कल सुबह हम रहेंगे कि नहीं बता नहीं सकते। महाभारत में दिखाया है, एक भिखारी आता है भिक्षा मांगने के लिए, युधिष्ठिर कहता है आज नहीं मैं तुमको कल दूंगा। भीम जोर जोर से हंसने लगता है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि कल तक तुम जीवित रहोगे, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें गारंटी है कि कल तक तुम रहोगे। जीवन अनित्य है, खुद को तैयार करना है। कभी भी प्राण तन से निकल सकते हैं, अभी अभी जो मिल रहा है पता नहीं उसका क्या होगा, और किस अवस्था में हमारे शरीर से हम आत्मा निकले। सोचो दिन भर हम सेवा कर रहे हैं, और कभी हम टीवी देखने बैठ गए और उसमें कोई क्रिकेट मैच चल रही है और हम एक्साइट हो गए और उसी समय शरीर छूट गया, तो किसकी याद में शरीर छूटा? देखा ना कैसा एक्साइटमेंट, हमने बीकेएस को भी देखा है, ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत एक्साइटेड हो जाती। स्वयं को एवर रेडी बना देना, ये कार्य केवल और केवल अब होगा। ये जितनी भी सारी बातें तो हजारों है, कुछ बातें बताई, समय पूरा हो रहा है, तो ये सारी बातों का गहराई से चिंतन करना, जो कुछ किताबों के नाम बताए स्पार्क से, लिटरेचर विभाग से, वो लेना। एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है पढ़ना, स्टडी करना, सेल्फ स्टडी, भट्टी हो या ना हो अपनी सेल्फ स्टडी चालू हो। अमृत वेला की किताब, ब्रह्मचर्य की किताब, मम्मा की किताब। मधुबन में हम लोगों का जो ग्रुप है, आज पूरा हुआ एक मास से, हरेक ने हरेक को काम दिया गया, हरेक ने मम्मा की एक विशेषता पर 15-15 मिनट बोला है। मम्मा की मधुर झनकार आप वो देख सकते हैं, हरेक ने जो वहां पे जो बाहर के लोग आते हैं भाई बहन, सुबह जो हम लोगों का ग्रुप होता है वहां पे 5 से 6:15 तक पिछला एक मास पूरा पूरा कंप्लीट मम्मा के ऊपर था, आज पूरा हुआ। मम्मा के जो 10 संदेश है आज वो वहां पर पढ़कर नहीं, बिना पढ़े बिना देखे चिंतन कर मतलब तैयारी कर आत्माएं आई और उन्होंने सुनाया बहुत सारी बातें। तो ऐसा अपना भी एक सीरीज, एक स्टडी कोर्स रखना है कि पिछले अगले एक महीने में मुझे ये सीरीज पूरी करनी है, वैराग की, तपस्या की, या ये मुरली। रोज की साकार मुरली चलती है वो तो है ही है, पर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम हम करें, बुद्धि को ज्ञान और योग से भरे। तो ऐसा ये समय है नाउ और नेवर का। ओम शांति।